Basta, eh?
संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 590, छंद नंबर 262-263 पढ़ो।
ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्ता स्वयमेवानुभूयते एवं तत्त्ववस्थित्या स्वयं व्यवस्थापयन् स्वयम् अलङ्घ्यं शासनं जैनं नेकान्तो व्यवस्थिता मूढजनो को इसे तरह ज्ञान मात्र समझाए अनेकांत अनुभूति में उतरा तमराय अनेकांत जिन देव का शासन रहा लंग वस्तु व्यवस्था थाप कर थापित स्वयं पिसे।
जब परिशिष्ट आरंभ किया था तो वहां पहले छंद में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वस्तु की व्यवस्था को साधवाद के माध्यम से यद्यपि ज्ञान मात्र आत्मा को विस्तार से समझा दिया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत और समझाते हैं। वहां पर स्यादवाद के माध्यम से अनेकांत रूप वस्तु व्यवस्था को समझाने की प्रतिज्ञा की थी और उसी प्रतिज्ञा के का समापन करते हुए वो कह रहे हैं कि इत्तक ज्ञान विमूढ़ा नाम क्या रवि माइक में आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? मूल तो ये है ना, ज्ञान विमूढ़ा नाम ज्ञान मात्रम प्रसादयन्। अज्ञानी जगत को मैंने जो प्रश्न किया था कि तुम भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो तो उसमें एकांत हो जाएगा, तो उन्होंने कहते हैं हमने ज्ञान मात्र भगवान आत्मा को साधवाद के माध्यम से समझाया और ये समझा दिया कि यह भगवान आत्म तत्व अनेकांत स्वरूप है, मैंने एकांत रूप नहीं है, अनेकांत स्वरूप है और ऐसी वस्तु की व्यवस्था को स्थापित करता हुआ यह अनेकांत स्यादवाद जो जनेन्द्र भगवान का अलंग शासन है उसको व्यवस्थित करता हुआ प्रकट हुआ। माने अलंग शासन जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अलंग। तो कहते जिनेन्द्र भगवान का शासन जो अनेकांत रूप है, अनेकांत स्वरूप है और जिसको स्यादवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए कि ज्ञान मात्र आत्मा को इस तरह से अज्ञानी जनों के लिए बात समझाई। यद्यपि बात बहुत स्पष्ट हो गई फिर भी अभी उस चित्र के शिष्य के चित्र में प्रश्न खड़ा होगा कि तुम ज्ञान मात्र कहते हो तो अकेला आत्मा में ज्ञान नहीं है और कुछ नहीं है, वो मात्र शब्द से पर का निषेध करते हैं और विकार का निषेध करते हैं, तो इसे ऐसा लगता है कि बस जैसे कुछ है ही नहीं, बस मात्र, बस ज्ञान मात्र, बस अकेला ज्ञान, बस अकेला ज्ञान। क्या मेरा मतलब समझे ना? माने वो तो ये कहते हैं कि पर से भिन्न है और अपने में अत्यंत परिपूर्ण अनंत गुणों का अखंड पिंड है, लेकिन वो मात्र शब्द क्या लग गया ना उसमें ज्ञान के साथ में, तो उसे बस ऐसा लगे बस इतना ही, माने बस जैसे कुछ मिला ही नहीं हो, बिल्कुल गरीबी हो रह गया हो, भूखों मर जाएगा, ऐसा लगता है। तब वो ये कहते ज्ञान मात्र माने अनंत गुण वाला है, ज्ञान दर्शन तारे त्रिशुक वीर जैसे, और फिर वो कहेंगे कि अनंत वाला है तो बताओ गिनाओ अनंत, तो उनमें से फिर वो कहेंगे अनंत तो गिनाई नहीं जा सकती है, कि कुछ तो बताओ, तो उनमें से वो 47 शक्तियों का वर्णन वो आगे करेंगे जो उसकी भूमिका अथवा है ये, और पुराने कथन का विस्तार वो है कि वो भगवान आत्मा जो ज्ञान मात्र है वो अकेला अनंत गुणों उसमें मौजूद है, ज्ञान मात्र में है ना। इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान विमूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। इस प्रकार जिन देव का अलंग शासन रूप अनेकांत वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था द्वारा स्वयं को स्थापित करता हुआ स्वयं व्यवस्थित हो गया, इस तरह वो कहते हैं अनेकांत शब्द का अर्थ है भगवान आत्मा भी होता है। पहले सिद्ध किया था अनेक माने बहुत और अंत माने गुण धर्म। जब अनेक का अर्थ जो अनेक है वो अनेक प्रकार का होता है, सबसे छोटा अनेक दो हैं और सबसे बड़ा अनेक अनंत है। देखो शब्द ही पड़ा अनेक माने अन एक माने एक नहीं, बस कदम कि वो और कितने वो चाहे कितने बस एक नहीं। अन शब्द निषेध बाती है ना, तो एक का निषेध वास्तव में कहते तो हैं कि निषेध, लेकिन उसमें अनेक एक शामिल है। देखो ये उंगली कितनी है, एक और एक चार, चार नहीं चार एक, देखो एक 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 एक, तो कहने को तो ये है कि एक नहीं अनेक है, लेकिन अनेक में अनेक अनेक एक शामिल हैं, वो एक ही एक से भरा हुआ है। ऐसे अपन बोलते हैं ना, तुम्हारे पास 1,001 रुपया होंगे, बोले 1,001, 1,000 क्यों नहीं बोलते, 1,000 है, 1,001 मैंने 1,001, 4,001 10,001 वर्ष का होगा, तो 10,001 माने वास्तव में असली संख्या तो एक ही है और कोई दूसरी कोई संख्या है ही नहीं, और जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उतने एक हैं। ये 1,000 बोलो तो 1,000 एक हैं, 1,00,000 बोलो तो 1,00,000 एक हैं। अब अपन ने कहा था वो अनेक जो हैं जो एक नहीं, बस गिनती में से एक को हटा दो और बाकी सब अनेक हैं, तो अनेक का अर्थ सबसे छोटा अनेक हो गया दो और सबसे बड़ा अनेक हो गया अनंत। तो जब अंत शब्द का अर्थ गुण करें तो अनेक शब्द का अर्थ अनंत करें, कि जो अनंत गुणों का अखंड पिंड है वो वस्तु वो द्रव्य अनेकांत है। आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, वो भी अनेकांत है। तो अपना आत्मा ही अनेकांत नहीं है, बल्कि सबके आत्मा अनेकांत है। और सबके आत्मा नहीं, जगत में जितने द्रव्य हैं सभी द्रव्य अनेकांत स्वरूप हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, इसलिए अनेकांत स्वरूप हो गया। तो जब सारी चीजें ही अनेकांत स्वरूप हैं, इसका मतलब है सारा जगत अनेकांत स्वरूप है और मैं भी अनेकांत स्वरूप हूं। तो ये कहता है जगत की अनेकांत रूप व्यवस्था को स्थापित करता हुआ, स्थापित समझाता हुआ, इस जगत के सामने स्पष्ट कर दिया इसने कि जगत अनेकांत स्वरूप है और स्वयं भी स्थापित हो गया, माने मैं भी अनेकांत स्वरूप हूं, ये बात स्वयं स्थापित हो गई। जब कोई आदमी ये कहता है कि सारा जगत अनेकांत स्वरूप है, तो सारे जगत में मैं आया कि नहीं आया, तो मैं भी अनेकांत स्वरूप हो गया ना। जैसे कोई ये कहे कि सब जैनी कंजूस होते हैं, तो ऐसा हमने कही तो उसने हम आए कि नहीं आए, तो वो कहते हैं कि तूने सारे जैनियों को कंजूस बताते हुए स्वयं को ही कंजूस स्थापित किया है। मैंने तूने स्वयं को तो कहा माना ही है, वो बात तो तेरी पक्की हो गई, और दूसरा है कि नहीं है वो दूसरे को देख के निर्णय करेंगे हम। तो अनेकांत स्वरूप जगत की व्यवस्था को स्थापित करता हुआ यह स्यादवाद स्वयं अनेकांत रूप स्थापित हो गया। अनेकांत रूप स्थापित हो गया माने ज्ञान मात्र वाला जो आत्मा था, जो तुम्हें बिल्कुल अकेला अकेला लग रहा था, खाली खाली, सिर्फ ज्ञान, बस सिर्फ ज्ञान, क्यों कहते सिर्फ ज्ञान, तो कहते कि नहीं भैया, उस सिर्फ में अनंत गुण व्याप्त हैं। हो गया ना। मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए, अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय, कहते अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा इसकी अनुभूति में आ गया। आत्मा की अनुभव की प्रक्रिया ये है कि तुम वस्तु का सम्यक स्वरूप समझो तो तुम्हें अपने आत्मा का अनंत गुणात्मक स्वरूप समझ में आएगा और उसमें से सब कुछ सम्मय दर्शन ज्ञान तारित्र प्रकट हो जाएगा। उसी का नाम तो सम्मय दर्शन ज्ञान तारित्र है। और अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसको ही जिनेन्द्र भगवान का अनेकांत शासन कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान का मन जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया, इसलिए उनका कहते हैं, लेकिन उनका थोड़ी है, तो वस्तु के स्वरूप का है। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो भी वस्तु का स्वरूप बताया तो अपन भगवान को सारी बात का वो बताते हैं ना, जैसे भगवान ने बता दी थी वो सब कुछ उन्हीं ने कर दिया, तो कहते उनने तो सिर्फ बताई है, जो चीज उनने बताई है तो वो प्रत्येक वस्तु में है ना। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसने वस्तु की व्यवस्था को स्थापित कर थाप कर और स्थापित स्वयं प्रसिद्ध, वो स्वयं स्थापित हो गया। इस प्रकार इस समापन के कलशों में मात्र यही कहा गया है कि स्यादवाद के माध्यम से समझने पर ज्ञान मात्र आत्मा इस कथन का वास्तविक आशय अत्यंत विमूढ़ अज्ञानियों की भी समझ में सहज ही आ जाता है। यह जिनेन्द्र भगवान का शादवाद जिनेन्द्र भगवान का अलंग्य शासन है, अभेद्य किला है, जिसका न कोई उल्लंघन कर सकता है और न इसे किसी के द्वारा भेदा ही जा सकता है। यह श्यादवाद वस्तु व्यवस्था को भली भांति स्पष्ट करके उन्हें स्थापित करके स्वयं स्थापित हो गया है। तात्पर्य यह है कि इस श्यादवाद में वस्तु स्वरूप को इस प्रकार समझाया है, सिद्ध किया है, स्थापित किया है कि जिसने न केवल वस्तु स्वरूप की व्यवस्था ही स्पष्ट हुई है, अपितु यह श्यादवाद का सिद्धांत स्वयं स्थापित हो गया है, विद्वत जनों को सर्वमान्य हो गया है। अब श्यादवाद अधिकार आरंभ किया गया था जब तब आचार्य देव ने इसे सर्वज्ञ भगवान का अस्खलित शासन कहा था, काय को श्यादवाद को। और अब यहाँ समापन के प्रसंग पर इस श्यादवाद को उन्हीं सर्वज्ञ भगवान का अलंग शासन कहा जा रहा है। वहां अस्खलित कहा था और यहाँ अलंग कहा जा रहा है। अस्खलित में और अलंग में क्या अंतर है? अपने छंद में आता ना वो, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, स्खलन माने होता है चूकना। तो कहते हैं ये जिनेन्द्र भगवान का अस्खलित शासन है, माने ये कभी भी चूकता नहीं है, है? अचूक उपाय है ये, रामबाण औषधि है। और यहां कहते हैं कि वो अलंग है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसके शासन में आना ही पड़ेगा, आता ही है। देखो अज्ञानी और अज्ञानी से, जो मूर्ख से मूर्ख है, वो भले ही श्यादवाद शब्द का अर्थ नहीं समझता हो, अनेकांत अर्थ का शब्द का अर्थ नहीं समझता हो, लेकिन सुबह से शाम तक निरंतर उसी भाषा में बात करता है, माने वो ये अपेक्षा लगा के बात करता है ना। जब अपने कहते हैं कि कितना लंबा है इसमें, ये हॉल है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 25 फुट। तो हम कहते हैं भाई तुम इसकी ऊंचाई बताओ ना, ये फुट बीच में कहां से ले रहा है? कहते हैं कि इसकी ऊंचाई जानी तो जा सकती है, लेकिन बताने के लिए तो बीच में फुटों को लाना ही पड़ेगा। गज ले आओ, इंच ले आओ, कुछ ले आओ, वो हमें कहना ही पड़ेंगे। जान होने के लिए फुटों की जरूरत नहीं है, और जानने के लिए भी फुटों की जरूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट हमें दिख जाती है ना ऊंचाई, दिख रही है अभी कितना लंबाई है वो भी दिख रही, चौड़ाई है वो कितनी है वो भी दिख रही, जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे कहना हो, लिखना हो, तो वो हमको कोई इतने फुट, इतने गज, इतने मीटर, कुछ ना कुछ हमको नाप के लिए कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। माने वस्तु के स्वरूप में निरपेक्षपना भी स्वयं से ही है, उसे किसी भी पर की अपेक्षा रंच मात्र नहीं है। इस हॉल को इतना ऊंचा होने में किसी की भी रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, लेकिन इसको ऊंचा कहने के लिए फुटों की अपेक्षा है। तो इस तरह से जैसे जिनेन्द्र भगवान का ये जो शासन है, इसमें से कोई भी बाघ बाहर नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी निरंतर इसका प्रयोग करता है। मैं इसको पहले एक उदाहरण दिया करता था कि एक किसान गांव से अपने पास के कस्बा में जाता है, ہے نا کوئی, جیسے مان لیجیے لاکھ جن سنکھیا والا کوئی نگر ہے اور اس کے پاس ہزار دو ہزار کی سنکھیا والے بہت سے گاؤں چاروں طرف بستے ہیں, وہ ایک طرح سے کیندر بن جاتا ہے. اس کیندر میں سب وہاں کے کسان لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا اناج بیچتے ہیں, منڈی ہے جو بھی کر کے, اور اپنے آوشیکتا کی چیزیں خرید کے لے جاتے ہیں. تو وہ کسان ایک سلے سلائے کپڑوں کی دکان پہ پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کے لیے ایک مطلب کرتا یا پھر بشرٹ جو بھی نام آپ دو وہ دے دو. تو اس نے پوچھا کہ تیرے بچے کے لیے چاہیے نا, تو بچہ کتنا بڑا ہے, کیونکہ وہ کیسے دے رہے, یہ 25 برس کے جوان بھی بیٹا ہو سکتا ہے تو اس سائز کا دے بے, ایک برس کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. تو اسے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اب کسان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. اب دیکھنا, اب وہ کسان انہیں کتنا ہے, 10 برس کا ہے, 20 برس کا ہے, تو مجھے تو یہ تو پتا نہیں ہے, لیکن اتنا مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ ہوا تھا تب اس کی ماں ووٹ ڈالنے گئی تھی اور وہیں اس کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا, پھر وہیں سے اسپتال لے جانا پڑا تھا اور وہ ہو گیا تھا. جب وہ چناؤ ہوا تھا نا, ووٹ ڈلے تھے تب ہوا تھا. میرے کیا کرے, اب ووٹ تو 5 سال پہلے بھی ڈلے تھے, 1 سال پہلے بھی ڈلے تھے, 10 سال پہلے بھی ڈلے تھے, 25 سال پہلے بھی ڈلے تھے. اب وہ نہیں سمجھ سکتا ہے, اسے برسوں میں نہیں ہے پتا کہ 10 برس کا ہے کہ 20 برس کا ہے. وہ تو ایسے یاد رکھتے ہیں جو بنا پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ کہتا ہے بیٹھو آپ بیٹھو, اسے بیٹھا لیتا ہے آرام سے, بیڑی پلاتا ہے, اسے چائے پلاتا ہے. اور پھر ایک لڑکا وہاں سے نکلتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اتنا بڑا ہے تیرا بچہ, نہیں اس سے بڑا, ایک سیکنڈ میں بتا دیتا ہے. میں نے اسے اپنے بچے کی اونچائی لمبائی چوڑائی سب پورا پتا ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتا, چھٹ میں انچوں میں نمبر سے نہیں بتا سکتا کہ اس سے بڑا. تو ادپی اس سے کام نہیں بنا, لیکن بالکل بھی اجیان نشٹ نہیں ہوا ہو بچے کے سمبندھ میں, سو بات بھی نہیں ہے. اتنا تو خیال میں آ گیا نا, اب اس سے چھوٹے بچے تو سب نکل گئے نا, پھر دوسرا بچہ نکلا اس سے بڑا, کہ اتنا کہ نہیں اس سے چھوٹا, تو کچھ تھوڑا موٹا آئیڈیا ہو گیا نا, اس سے بڑا اور اس سے چھوٹا, اس کے بیچ میں ہی کچھ ہوگا. پھر تیسرا بچہ نکلا کہ اتنا کہ نہیں اس سے موٹا, ایسا تو اتنا ہی لیکن اچھا تگڑا ہے, ایسا نہیں ہے دونوں بدلا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک بچہ اور نکلا تو کہا اس سے پتلا, تو دکاندار بولا 5 نمبر کی بسٹ لے جا. سمجھے نا, میں نے وہ اس آدمی نے بھی آخر اپنی بات بتائی دی اور گراہک دکاندار نے بھی سمجھ لی اور اس نے سیاد باد کا پریوگ کیا, اس سے بڑا, اس سے چھوٹا, اس سے موٹا, اس سے پتلا, کہ ایک دم گورا بھورا, کہ ہمیں کوئی نہیں جاننا کالا ہے کہ گورا ہے, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں تو تیرے بیٹے کو ناپ کی بسٹ دینا ہے, تو اس کے گورے کالے کا کیا فرق پڑے گا, کالا ہو تو بھی اتنی آئے گی اور گورا ہو تو بھی اتنی آئے گی. تو آخر کار وہ بسٹ دے دیتا ہے اور وہ لے جاتا ہے, نہ پوری طرح فٹ ہو لیکن پھر بھی بن تو جاتی ہی ہے, کام تو چل ہی جاتا ہے نا. تو کہتے سارے جگت کے دوارا الگھن نہیں کیا جا سکتا, वो श्राद्धवाद के प्रयोग से बच नहीं सकता। क्या अज्ञानी से अज्ञानी और मूर्ख से मूर्ख भी श्राद्धवाद, बाद माने होता है वाणी बोलना, तो कहते हैं बाद जो भी बाद माने कथन है वो सब श्राद्ध है, वो अपेक्षा से ही है, कथन वस्तु को अपेक्षा से, और अब वो अपेक्षा किसी न किसी पर भी लगाने पड़ती है, पर से और कोई संबंध नहीं है। देखो कल बताया था ज्ञाता के ये संबंध है अकेला, और उसकी बहुत बहुत विस्तार से चर्चा की, लेकिन जब भी बात आती है तो उसको इस काम में तो लेना ही पड़ता है ना पर को। वो जो चार बच्चे देखे उसने और हर एक को ना कहा, देखो ये भी बात समझ लो, हां नहीं कहा कि इतना कि इससे मोटा, इससे पतला, इससे लंबा, माने इतना नहीं, तो उसने ना कहा ना, तो ना नाम ऐसे भी कोई हां निकल आई। इसलिए वेदांत में लिखा है कि वेद ताहि नेति नेति बखानत हैं, उनके यहां नेति शब्द आता है। नेति माने क्या है? ये जो नाक से पानी निकालते वो नेति नहीं, ना इति, ना माने नहीं तो इति ऐसा, ऐसा नहीं। वेद वेदों में भी उस ब्रह्म का स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं तो वे ना इति, ना इति शब्द से ही उसका बखान करते हैं। और पंचाध्यायी में देखना कि परम शुद्ध निश्चय में क्या है, मैंने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जो असली वस्तु, तो वो कहते हैं कि उसका वाच्य क्या है, मैंने किन शब्दों से व्यक्त होता है वो न्यायाधिराज, तो न तथा, न तथा शब्द से बात है जो, और जो 20 कलश आते हैं अपने इसी समयसार में कर्ता कर्म अधिकार में, उनमें भी न तथा, न तथा आता है, वो पढ़ने का छंद है। एक न कहता है ऐसा है, दूसरा न कहता है ऐसा है, है ना?
इति द्वयोर्द्वा व्यतिपाक्ष्य पातौ तत्तु वेदी पाक्ष्य पात चास्ति नित्यं खलु चेत्य देव।
एक न कहता है ऐसा है, दूसरा न कहता है ऐसा है, लेकिन ज्ञानी जन तो उसको जानते हैं जैसा वो है वैसा, न ऐसा है न ऐसा। तो पंचाध्यायी में न तथा शब्द से जो बात है वो न्यायाधिराज है। तो आखिर वो वेदांत में, पर आखिर जैन दर्शन के परम शुद्ध निश्चय नये में एक ही बात आगे पहुंच जाती है ना, कि वो ना ना कह करके भी उसमें से हां निकल आती है। और गणित तो बहुत साफ कहता है कि दो ना मिलाओ तो एक हां हो जाती है। ऐसा नहीं है, जब किसी को बात बोलते हैं ना तो उसको ही, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1000 रुपया होंगे तो क्या कहता है, रुपयों की क्या कमी, तुम बोलो क्या काम है, क्या बोला, रुपयों की क्या कमी, तो है कि नहीं है ये बताना। लेकिन वो नहीं, क्लियर नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, रुपयों के तो ढेर लग जाएंगे तू बात क्या करता है, लेकिन तू काम तो बोल, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो ये बता देना कि हैं रुपया, अभी हैं कह देता है वो तो कह दे दे तो देना पड़ेंगे ना, और ना कह देता है तो वो बिल्कुल ऐसा है नहीं कि उसे नहीं देना है, वो तो उसे काम देखना है कि तुझे किस काम को चाहिए, मौज मस्ती उड़ाने को चाहिए कि कोई बहुत बढ़िया काम के लिए चाहिए, उसके हिसाब से वो तेरे को देने की बात करेगा। इसलिए ना ये कहता है कि हैं اور نہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، کہ روپیوں کی کیا کمی، تو دے دے بھائی آج، آج سنڈے ہے، آج بینک بند ہے، آج تو نہیں مل سکتے ہیں، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ ہیں تو تاج اتنے، ایک بھی تو بینک میں پڑے ہیں نا، اور آج سنڈے ہے، نہیں مل سکتے ہیں، نہیں دینا ہو تو ایسا کر دے گا، اور دینا ہو تو دے دے گا، آپ سمجھ لیں نا. تو کہتے ہیں کہ اپن نا نا بولتے ہی ہیں، تو دو نا بولتے ہی ایک ہاں ہو جاتی ہے. ایسا یہ انیکانت سروپ بھگوان آتما اور سیاد باد مہا سدھانت، جنہیں بھگوان کا یہ الگ شاسن ہے جس نے اس بھگوان آتما کو گیان ماتر استھاپت کیا، اور یہ سارا جگت انیکانت مے، گیان ماتر انیکانت مے، انت گن والا ایسا سدھ ہو گیا. تو ایک ارتھ تو جو انیکانت کا گن کیا تھا اس کی اپیکشا تو یہ بات ہوئی، اور دوسرا ارتھ کیا کیا تھا؟ دو. سب سے چھوٹا انیکانت کون ہے؟ دو. تو کہتے ہیں ہر آتما نے ہر درب میں ایسے انت دھرم یوگل ہیں، دھرموں کے جوڑے ہیں، گڑوں کے جوڑے ہیں، اور بے انت جوڑے ہیں. کیسے؟ نتیہ انت، ایک انیک، سمجھے نا؟ ایسے جتنے دھرم ہیں وہ جوڑے سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو وستو نت ہے وہی وستو انت ہے، یہ لوگوں کے گلے نہیں اترتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ یا تو وہ نت ہوگی یا وہ انت ہوگی. کیوں؟ جو ہی وستو اتنت مضبوط ہے اور بے ہی بہت کمزور ہے. یہ کہاں سے؟ تو کہتے بھیا یہ چار سال سے لگا رہے، ٹوٹتا ہی نہیں ہے. جہاں جیسا پڑا رہے ایسا گر جاتا ہے، کئی دفعہ تو نیچے گر گیا، آنکھ میں سے گر جاتا ہے، نہیں ٹوٹا. اور پھر ذرا وہ سامنے والا اس کے ساتھ چھڑکھانے کے بہت نازک ہے. نازک ہے کہ مضبوط ہے؟ بولو. ایسے ہر چیز میں آپ دیکھو جو برسوں سے چلتی آ رہی ہے، کیوں؟ تو مضبوط ہے نا وہ، تو اس کے ساتھ ایسی کھلواڑ تھوڑی کر سکتے. ایک کھمبے کا پنا لگایا، لکڑی لگائی، تو یہ برسوں تک، پچاس سال سو سال تک بھی ایسی کی ایسی رہتی کہ نہیں رہتی ہے؟ تو مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اسے آپ ایک کوہاڑا مارو تو ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ کانچ لگا دیا تو برسوں تک سو برس تک رہ سکتا ہے نا، اور اس میں ایک ہتھوڑا مارو تو ٹوٹ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو مضبوطی اور ٹوٹنا مطلب کمزوری، یہ دونوں ہی ودمان ہیں، اس کے بیچ کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں دو پرسپر ورودھی دو دھرم، کون نت ہے انت ہے. تو ہر وستو میں یہ دھرم یوگل ہیں، ہر وستو نت بھی ہے اور انت بھی ہے. اب یہ جو پرسپر ورودھ پنا ہے اس کو سیاد واد سادھت، سیاد واد کے دوارا وہ سدھ کیا جاتا ہے. کیسے؟ کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ اگر ہم درب درشٹی سے دیکھیں تو بھگوان آتما نت ہے، پریائے درشٹی سے دیکھیں تو بھگوان آتما انت ہے. اب وہی آتما کہ بھائی کتنا پرانا ہے بولو ہمارا تمہارا آتما؟ اناد کال سے ہے. کوئی کسی سے، یعنی ہم کال سے گنتی کرتے ہیں نا، یہ گیارہ برس کا ہے، یہ بارہ برس کا ہے، یہ سولہ برس کا ہے، یہ سولہ برس کا بڑا ہے، پندرہ برس کا چھوٹا ہے، کرتے ہیں نا نرنتر اپنی جو سینئرٹی جونیئرٹی، تو عمر کے حساب سے کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے ہیں کہ جی اتنا ہے، جی اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے. تو اب اصلیت میں کہ چھوٹے بڑے ہیں، کوئی دس سال کا ہے، کوئی بیس سال کا ہے، لیکن واستو میں تو دونوں ہی انادی کے ہیں. کیوں؟ دونوں ہی انادی کے ہیں، تو کون بڑا ہو کون چھوٹا، اور دونوں ہی انت کال تک رہنے والے ہیں. تو کال کی دشتی کون چھوٹا ہو کون بڑا ہو سکتا؟ تو ہم کہتے ہیں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا بھید ہی نہیں ہے، جس سب انادی کے ہیں سب برابر ہیں. آتا کہ نہیں آتا ہے؟ और फिर नहीं तरह बसबू पर आएगी अपेक्षा लगाओ कि ये मनुष्य जिससे जन्म हुआ था हमने वो तारीख गिन ली। और इसमें एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है रमेश, कि ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी 80 बरस उम्र है, अब आप तो बस जन्म की तारीख से गिनते जा रहे हैं। अब वो आयु कर्म का उदय मां के गर्भ में आने से उसी समय से शुरू हो जाता, अब तुमने 9 महीना गिनते ही नहीं हो, तो 9 महीना पहले चल दोगे देखो ये तो कहा था इनने इतने चलेगी और ये चली ही नहीं, ये इतनी चलेगी चली ही नहीं। बोलो क्या कह रहे, अजय जी बताओ, सोचो। एक उदाहरण 50 उदाहरण देता हूं मैं, बाजार में आजकल चीजें मिलती है ना तो उन पर लिखी रहती है कि 100 साल चलने की पक्की गारंटी, कि 10 साल चलने की गारंटी, कि 3 साल की हमारी गारंटी लिखी रहती है हर चीज में। अब वो चीज जो आपने खरीदी उसकी 3 साल की गारंटी थी, लेकिन वो कब से थी? जब से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बनकर तैयार हुई है, तब से कि जब से आपने खरीदी है तब से। अब दवाई है ना, तो दवाई आउट ऑफ डेट होती है, तो तुमने जिस दिन से लिए उस दिन से 3 बरस तक थोड़ी चलेगी, उस पर तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी है उससे 3 साल उसकी उम्र है। अब तुमने 2.5 साल बाद खरीदी तो तुम्हारे पास 6 महीना उसकी उम्र है क्या? नहीं, जो आंख की दवाइयां आती हैं उन पर लिखा रहता है कि इसमें ये तो खत्म तो होगी 3 साल बाद, संसद 16 में खत्म होगी, लेकिन खोल लोगे तो खोलने के 1 महीने में खत्म हो जाएगी। आती ना खुली हुई हार्ट की जो दवाइयां आती है ना इमरजेंसी वाली, उनका भी यही नियम है, उनकी सीसी आती है तो उस सीसी की कितनी लंबी आयु है, लेकिन उसे खोल लो तो उस महीने में ज्यादा नहीं जा सकती क्या? तो अभी ऐसा इसमें नियम है कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, तो आत्मा कितना पुराना है? अनादि अनंत है, इतना पुराना है, इतना लंबा चौड़ा है, और एक क्षण पुराना भी नहीं है, क्योंकि प्रति समय बदलता है, और यदि बदलने को हम नया माने तो एक समय पुराना भी कहां है ना? तो अत्यंत नया भी है और अत्यंत पुराना भी है। वो कहते हैं कि भाई कैसा है, नया है कि पुराना है? तो तुम ये बताओ कि तुम नया को अच्छा समझते हो कि पुराने को? यदि चावल पुराने अच्छे होते हैं क्यों है? और गेहूं नया अच्छा होता है? ऐसा ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? कोई अनाजों में और कई चीजों में कि ये चीज पुरानी, 2 साल पुराने चावल खाओ तो बहुत अच्छे होते हैं, और ये गेहूं ये पुराने गेहूं हो गए तो उनमें दम नहीं रह गई, और अब बिल्कुल ताजा नई नई आई, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं नए नहीं अच्छे नहीं होते, नए नयों की रोटी खाओ तो दस्त लग जाते हैं, और बिना पुराने हो जाए तो वो ठीक रहते हैं। तो क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसे नए और पुराने का क्या हिसाब है? तो कहते हैं वस्तु का स्वरूप जो है वो अलंग है, जैन दर्शन की जो व्यवस्था है वो अलंग है, वो जिनेन्द्र भगवान की बताई हुई है इसलिए नहीं, वस्तु के स्वरूप में वो चीज पड़ी हुई है, उसकी प्रमाणिकता वस्तु के स्वरूप के कारण है। भगवान ने ये बताया कि तेरा आत्मा अनादि अनंत, अनंत गुणों का अखंड पिंड, सिद्ध के समान है, इसलिए तेरा आत्मा ऐसा नहीं है, बल्कि वो आत्मा ऐसा है इसलिए अनंत भगवान की वाणी में ऐसा बताया है। माने वस्तु किसी की वाणी की आधीन नहीं है, वस्तु का परिणमन, तो फिर वाणी वस्तु के अधीन हो गई, ये वाणी भी एक वस्तु है ना, तो वो भी किसी के अधीन नहीं है। उसका ऐसा सरल और सहज स्वभाव है कि उसे वस्तु वैसी दिखती है और उसे वैसे ही प्रतिपादन होता है, वो सारी सहज प्रवृत्ति है, वो ध्वनि कितनी है, ना वे कोई समझाते हैं ना वे बताते हैं, ना किसी को समझाने का उनको विकल्प है ना बताने का विकल्प है। देखो वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है, यदि ऐसी नहीं होती तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आज हमको प्राप्त नहीं होती। अब जो पूर्ण वीतरागी है, अब उन्हें किसी को बिल्कुल समझाने समझने का भाव नहीं है, लेकिन एक समय सारे जगत को समझाने का भाव था। बोलो दुलीचंद जी, कौन चीज अच्छी थी? जो आज है वो अच्छी थी कि वो अच्छी थी? कि सारे जगत को मैं समझा दूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो एक ही भाषा जानता हूं, हिंदी में समझाता हूं तो गुजरातियों की समझ में नहीं आता, गुजराती में समझाता हूं तो हिंदी की समझ में नहीं आता, मैं भले ही 6 भाषाएं जानता हूं लेकिन एक समय में एक ही को समझाऊंगा? बहुत मेरे कमजोरियां हैं कि मैं ये वस्तु का स्वरूप समझ गया हूं और मैं अब समझाऊं कैसे? समझाना तो मुझे है, मैं तो समझाऊंगा तो मैं जरूर। तो ऐसे भाव के कारण वो तीर्थंकर प्रकृति बन गई थी। इसको बोलते हैं बात्सल्य भाव। वत्सल अंग सदा जो होवे, सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति उससे बनती है कि दर्शन की विशुद्धि के साथ में सारे जगत से ऐसा बात्सल्य, सारे जगत को खाना खिला दूं, सारे जगत की सबसे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर दूं, रहने की, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, इस संबंधी जो उसे भी प्रेम बोलते हैं। ये नेता लोग कहते हैं ना, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे बच्चे को रोटी कपड़ा और मकान तो कम से कम उपलब्ध हो ही, लेकिन हमारा बस चले तो सबको करोड़पति बना दें, ऐसा ऐसा बात करते हैं या नहीं करते हैं? हो सकता है उनकी भावना भी ये होगी, लेकिन उससे तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली नहीं है। क्या क्या होगा? मैं सारे कोई आदमी भूखों नहीं मरे, रात में भूखा नहीं सोए, तो उसकी जो बुद्धि है वो अधिकतम अनाज पैदा करने की तरफ ही जाएगी ना, तो उसको वो खेती करने में ही तो रिसर्च करेगा, और उसे कोई यदि उपलब्धि होगी तो बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक बन जाएगा। कि जितनी जमीन में आप एक एकड़ में जितना 100 क्विंटल पैदा करते हो तो 1000 क्विंटल पैदा कर दे, ऐसी बुद्धि पैदा हो जाएगी। तो कौन सा बात चल होना कि ये जो वीतरागी तत्व ज्ञान है, अनेकांत है, सैदवाद है, ये जो वस्तु का स्वरूप है जो आप यहां समझ रहे हो, वो मैं सारे जगत को समझा दूं तो उसके ऐसा पुण्य बनता है कि उसको ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है कि एक भाषा में बोले, मतलब ओमकार ध्वनि आवे तो 18 भाषा तो महाभाषा और 700 छोटी छोटी भाषाएं इतने लोगों को समझ में एक साथ आ जाए। क्योंकि अकेला हिंदी वालों को समझाने का भाव नहीं था, अकेला गुजरातियों को समझाने का भाव नहीं था, अकेला मराठियों को समझाने का भाव नहीं था, सबको समझाने का भाव था। ऐसी भाषा उसे मिल गई, ऐसी उपलब्धि हो गई। अब देखो इतनी तीव्र भाव था सबको जगत को समझाने का, और भाग्य की बात देखो कि जब वो वाणी ऐसी उन्हें उपलब्ध हुई तब समझाने का भाव ही खत्म हो गया। अब क्या करें? अब इन्हें बोलने नहीं है, जैसे मूक कोयली होते हैं ना, सर्वज्ञ सब समझ गए सब बात है, नहीं नहीं बोलना। तो कहते हैं कि तुमको बोलने का भाव नहीं होगा तब भी तुम्हारे निमित्त से ऐसी वाणी खरेगी इतने लोग समझेंगे। ये वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। बिल्कुल उसे कुछ भी बोल समझाने का भाव नहीं है। आपने समझाया, आपने बड़ी कृपा करी, क्या करी उनने तो समझाने का भाव तक नहीं किया, तो बोले तो दिव्य ध्वनि तो सुनाई कि दिव्य ध्वनि तो भाषा जड़ पुद्गल की पर्याय है, और चेतन आत्मा उसका क्या करे। एक दिव्य दूसरे दिव्य का रंच मात्र भी करता नहीं है, तो वो कुछ नहीं किया उन्होंने, सहज भाव से वो दिव्य ध्वनि की। अब ये विचित्र स्वरूप देखिए, इस तत्व ज्ञान का कि जानकार जीवों का रहना इस लोक में अत्यंत जरूरी है। निबीजक नहीं हो जाए, बीज राख फल भोग भी, बीज को रखो फिर फल भोगो, क्योंकि बीज ही तुमने खत्म कर दिया तो गए, ख्याल में आई बात। तो वो जो जिनको बिल्कुल बोलने का भाव नहीं था उनको ऐसी दिव्य ध्वनि थी। अब ये लोग और ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, कौन गुणधर देव से लेकर के चौथे गुणस्थान तक के ज्ञानी धर्मात्मा, तो उनके अंदर वो वस्तु स्वरूप की जानकारी है और समझाने का इतना तीव्र राग है। देखो रागी और वीतरागी दोनों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का प्रचार होना हो तो कहीं भी रुक ना जाए। वीतरागियों के बिना राग के खिल जाती है वो दिव्य ध्वनि, बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के, बिना समझ गए ना, और रागियों के इतना राग होता है। प्रकृति की व्यवस्था देखो, मैं ये कहता हूं कि माँ और अपने बोलते माँ, माँ तो बहुत ही महान होती है, बहुत ही महान होती है, वो अपने बच्चों को किस तरह से पालती है ना। तो जिस माँ को एक बेटा एक बेटी दी, एक समय में एक बच्चा होता है ना, अपना नियम तो वही है, कोई दुड़वा मुड़वा हो जाए उसको छोड़ो, वो तो बहुत अब्बाद है। तो उसको एक दिया तो माँ को ऐसा राग दिया वो बच्चा 10 वर्ष तक हाथ से खा नहीं पाए, बना नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, कितनी अपंगता है शुरू से ही। तो ऐसे अपंग बालक के माँ को इतना राग दिया कि वो 24 घंटा उसकी बिना तनख्वाह की गुलाम है। ऐसा कोई आदमी आज तक इस दुनिया में नहीं है कि उसे तुम इतने ताज इतना पैसा दो, 1 करोड़ रुपया रोज दो, लेकिन 3 पाली में काम करे। 3 पाली में काम करना समझ में आई, 8-8 घंटे की 1 पाली होती है ना काम भी नहीं, तो 3 पाली में काम करे। है कोई ऐसा जगत में है ये मुफ दिया, ये माँ है ना, ये 3 पाली में काम करती है, रात के 2 बजे 1 बजे छुट्टी ही नहीं होती है, 12 महीना और 24 घंटे वो अपने बच्चों की ड्यूटी में है कि नहीं है बोलिए, और 1 पैसा तनख्वाह नहीं मिलती है। ये व्यवस्था कहाँ है, तो उसको ऐसा राग है, ऐसा राग होता है। अफसर बनी के 1 लाख एक साथ पैदा हो जाते हैं, अब उसके भी ऐसे ही राग हो, वो पाल पोस के तैयार करे, सारी दुनिया में सांप ही सांप दिखे, दूसरों को रहने को जगह ही नहीं मिले, तो उस माँ को ऐसा स्वभाव मिलता है कि वो सारी सारे अपने बच्चों को खुद खा जाती है, कुंडली माल के एक को नहीं बचने दी। और उनके बच्चे ऐसी शक्ति के धारक होते हैं कि पैदा होते ही अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं माँ से, और मट्टी में यहां वहां धंस जाते हैं। ऐसे 2-4 बच्चे रहते हैं, इससे इतने सांप हैं दुनिया में, उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। देखो माने जिसकी जितनी दुर्लभता है उसकी प्रकृति ने उतनी अच्छी व्यवस्था की। पशुओं के बच्चे हैं, अब उनको क्या है, माँ बाप का क्या सहयोग है, कितना सहयोग है, कितने दिन सहयोग है ना, 1-2 महीना दूध पिला देगी, 4 महीना पिला देगी, आखिरकार तो सारी जिंदगी फिर उसे जो भी है, और कोई घर में स्टॉक नहीं है खाने पीने का, मतलब जंगल में है रोजी ना, वो कहना क्यों, ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की। तो कहते जिनेन्द्र भगवान का ये अलंग शासन है, किसी ने बनाई नहीं है ये व्यवस्था, किसी की बनाने से तो ऐसी कभी बनती ही नहीं है। हम लोग कितने व्यवस्थापक रखते हैं और अपने को बहुत बड़ा मैनेजमेंट वाले मानते हैं, व्यवस्थापक मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन छोटी से लेके बड़ी सब व्यवस्थाएं फेल होती देखी हैं, है? थोड़ी कमी तो रह गई है। अभी आज 5-7 आदमी के लिए दाल खत्म हो गई थी, ये खत्म हो गया था, कम पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत पड़ा रहा तो बहुत पड़ा रहा भी नुकसान है, क्यों? वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है। अब वो वस्तु के स्वरूप में व्यवस्था है और जैन भगवान का जो उसको शासन बोलते, शासन महावीर भगवान का शासन है तो वो अलंग शासन है। तो भगवान महावीर का शासन क्या है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, इसी को तो शासन बोलते हैं ना, क्योंकि राजा थोड़ी है, अकबर जैसा शासन थोड़ी है उनका है? उनका शासन क्या है कि उनने दिव्य ध्वनि के द्वारा ये समझाया था और वो समझे एक के माध्यम से एक के होते होती आज वो वस्तु सत्व हमें तुम्हें उपलब्ध है। इसका नाम ही भगवान महावीर का शासन है। और भगवान महावीर का शासन है और महावीर को जब बा दिव्य ध्वनि खिली थी तब भी रंज मात्र समझाने का भाव नहीं। अब देखिए आचार्य इतने वीतरागी आचार्य, तीन कसाई के अभाव वाले हो गए, सारी दुनिया से सब छूट गया, राग भोग स्त्री से पुत्र से बदमाश से परिवार से कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है, सच्चे भावलंगी संत का विचार करो तो भी उनको जिनवाणी लिखने का भाव आता है, तो भी उनको वस्तु स्वरूप समझाने का भाव आता है, कुत्ते बिल्ली को समझाने का भाव आता है, उन मुनिराजों को शेर को समझाने का भाव आया, माने वो व्यवस्था कभी भंग नहीं होती। वो निरंतर चालू है, निरंतर चालू है। 20 तीर्थंकर तो 24 घंटा लग रहे है ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना कम से कम, उनकी दिव्य ध्वनि निरंतर खिलती रहती है। एक श्री मंदिर खत्म हुए तो दूसरे श्री मंदिर आ गए, तीसरे दूसरे खत्म हुए तो तीसरे आ गए, उसी पोस्ट पे बैठ गए, वो काम चालू है, तीनों पाली में काम होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप इस वजह से जैन शासन जिंदा है। तू कौन सी खेत की मूली है और तू कर रहा है, तेरे को कोई विकल्प आ रहा है लिखने का बोलने का, तो वो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही है। कहते ना उनका कहावत है, भगवान क्या किनको गंजों को नाखून नहीं देता, नहीं तो ये खुदा खुदा के लुहान हो जाए। माने मेरे कहने का अर्थ है कि जो समर्थ हैं उनको ऐसा राग देता है इस टाइप का, जो विषय कसाय में समर्थ है उसे विषय कसाय के पोषण का राग देता है, रोता है वस्तु की व्यवस्था में है, देता कौन है, देने वाला कौन है, क्यों? तो ऐसा जिनन भगवान का अलंघनीय शासन निरंतर बरत रहा है और उस शासन ने क्या बताया कि तेरा भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है। अगर ज्ञान मात्र है तो फिर अब वो कल प्रश्न उठाएंगे, अपन 47 शक्तियों का प्रकरण शुरू होगा तो फिर वहां प्रश्न है ना, ननु एकांतम अस्यापि किमर्थम अत्र आत्मनो ज्ञान मात्र व्यपदेशा। यदि ऐसी बात है तो तुम्हारी इस आत्मा को अकेला ज्ञान मात्र क्यों कहा, कैसा वो है तो उसमें अनंत गुण तो कह दिया ज्ञान मात्र, कोई ऐसी बात है वो कह रहे कि है तो अरबपति और नाम रखा गरीब दास, ऐसा क्यों किया यदि इतना ऐसी बात है तो आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा, फिर ये प्रश्न सृष्टि में फिर खड़ा किया, तो फिर वो बताएंगे ज्ञान मात्र का अर्थ क्या है, वो काल भट कर बात चलेगी।